नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने का पात्र बताया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं, 8वीं और 5वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए और राज्य में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 14,43,000 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है। आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने तनाव कम करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद से उन्होंने खाड़ी देशों के नेताओं के साथ साथ ईरान, इसराइल और अमेरिका के नेताओं से भी टेलीफोन पर बातचीत की है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध 3 सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इसने विश्व भर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इसके असर से बचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।
अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। कल ही 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने ये निर्णय दिया। पीठ ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के वर्ष 1950 के आदेश के तहत ये नियम लागू है। इसके अनुसार हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने पर व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य होने की योग्यता खो देता है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सेना, नौसेना और वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त वे महिला अधिकारी अब पूर्ण पेंशन लाभ की हकदार होंगी जिन्हें मनमानी मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण स्थायी कमीशन से वंचित रखा गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को पेंशन पात्रता के लिए आवश्यक 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी माना जाएगा, भले ही उन्हें पहले ही सेवा मुक्त कर दिया गया हो। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं, 8वीं और 5वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने अजमेर में ये परिणाम घोषित किए। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 94.23%, 8वीं का 87.01 और पांचवी का 97.75% रहा है। बोर्ड ने दसवीं का परीक्षा परिणाम पहली बार मार्च महीने में घोषित किया है। राज्य सरकार के 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्णय के कारण ये कदम उठाया गया है। दसवीं की परीक्षा में 10,68,000, आठवीं में 12,86,000 और पांचवी में 13,68,000 विद्यार्थी पंजीकृत थे। अगले सत्र से परीक्षाओं में 2 अवसरों में से बेहतर परिणाम चुनने का नियम लागू होगा। इसके तहत दसवीं की परीक्षाएं साल में 2 बार फरवरी और मई में होंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आगामी सत्र से राजस्थान बोर्ड में भी CBSE बोर्ड की तरह बेस्ट ऑफ 2 फॉर्मूला लागू किया जाएगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस सत्र से दसवीं कक्षा की परीक्षा साल में 2 बार फरवरी और मई में आयोजित होगी। विद्यार्थियों को प्रथम परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। छात्रों को अगली परीक्षा में अपने 3 विषयों में सुधार का मौका मिलेगा। यह व्यवस्था लागू होने पर पूरक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने आज जयपुर में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार 2025 प्रदान किए। उन्होंने अलग अलग श्रेणियों में काम करने वाली सहकारी समितियों को ये पुरस्कार दिए। इस मौके पर श्री दक ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में सहकारिता क्षेत्र की बड़ी भागीदारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में आयोजित सदस्यता अभियान के दौरान सहकारी समितियों में 9,00,000 सदस्य बनाए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 14,43,000 से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के लक्षित 36,300 गांवों में से 35,900 से ज्यादा गांवों में ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश में अब तक कुल 14,80,978 संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों के कारण देश में किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने किसानों की आय के बारे में जानकारी दी।
कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है। मैं आज बताना चाहता हूँ, हमने बजट बढ़ा के 19,306 करोड़ से 1,30,000 करोड़ से ज्यादा हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। 14 के बाद 44% उत्पादन अलग अलग खाद्यान्न का बढ़ाया।
रेलवे ने टिकट निरस्तीकरण के नए नियम जारी किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि नए नियमों के अनुसार रेलगाड़ी के प्रस्थान से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। 72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर किराए का 25% शुल्क देना होगा। प्रस्थान से 24 से 8 घंटे पहले तक 50% धन वापसी दी जाएगी, जबकि 8 घंटे से कम समय रहने पर कोई राशि वापस नहीं मिलेगी। अब देश भर के किसी भी रेलवे काउंटर पर टिकट रद्द किए जा सकेंगे। रेल मंत्री ने बताया कि अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा शुरू करने का स्टेशन बदला जा सकेंगे।
अभी केवल चार्ट प्रिपेयर होने से पहले होता था, और खासकर जो बड़ी सिटीज है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लो न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है, कोई पैसेंजर है जिसको गाजियाबाद से पकड़ना है, उसने अगर टिकट में नहीं लिखाया है तो वो आराम से 30 मिनट्स बिफोर तक अपने टिकट में डिजिटली मार्क कर देगा कि मैं गाजियाबाद से बोर्ड करूंगा, तो उसकी सीट कन्फर्म रहेगी, रिजर्व रहेगी और वो गाजियाबाद से बोर्ड कर सकता है।
आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने आयुष्मान आरोग्य शिविरों का शुभारंभ किया। इन शिविरों में पोर्टेबल एक्सरे मशीनों के जरिए मरीजों का एक्सरे कर उनका उपचार किया जा रहा है। जिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से क्षय रोग के लक्षणों और रोकथाम की जानकारी देने के लिए महिला संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखे गए। वहीं डीग जिले में आज से 100 दिन का टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने जागरूकता रैली को रवाना किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी विजय सिंघल ने बताया कि अगले 100 दिन तक चिन्हित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कर मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है। हनुमानगढ़ के संगरिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आज किसान सारथी 2.0 पोर्टल के बारे में जागरूकता कार्यशाला रखी गई। कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर के निदेशक डॉ. जेपी मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसान मोबाइल ऐप, इंटरनेट पोर्टल या फोन कॉल सेवा के जरिए अपनी फसल, पशुपालन और बागवानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
किसान सारथी एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी समस्याओं को सीधे वैज्ञानिकों को बता सकते हैं और उनका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे देश के किसानों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी लोग किसान सारथी पोर्टल पर किसान सारथी फार्मर्स ऐप के माध्यम से उससे जुड़िए और उसका ज्यादा से ज्यादा भरपूर फायदा उठाइए।
भीलवाड़ा जिले में आज एक बस और कार की टक्कर में एक बालिका की मृत्यु हो गई और 37 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना भीलवाड़ा शाहपुरा मार्ग पर रायपुर चौराहे के पास हुई। सभी घायलों को शाहपुरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 5 लोगों को भीलवाड़ा रेफर किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने का पात्र बताया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं, 8वीं और 5वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए। और राज्य में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 14,43,000 से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।